जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय
Thank you. ज्योतिर्नायकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की स्कंद संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की ग्रंथराज श्रीमद भागवत महाप्राण की भगवद्वाणी श्रीमद भगवद गीता जथारूप की जगत धर्म हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की समवेत भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की गीता गौर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
समभाव रखते हैं, क्योंकि वे या तो आपके शरीर से उत्पन्न है या आपके मन से हैं। वे सतो रजो तथा तमो गुणों में से किसी से न किसी गुण से युक्त है, लेकिन परम नियंता भगवान समस्त जीवों पर समदर्शी होते हुए भी भक्तों पर विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। तो इस श्लोक के साथ और दो श्लोक है, उन दो श्लोक को पढ़ते हैं फिर इस तात्पर्य को पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 12। अग्नयो अतिथयो भृत्वा भिक्षवो ये च लिप्सवः सर्वं भगवतो ब्रह्मन् नुध्यान नरिष्यति। हे प्रियपति, मैं अग्नि, अतिथि, सेवक तथा भिक्षुक इन सबों का समुचित ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मैं सदैव आपका चिंतन करती रहती हूँ, अतएव धर्म में किसी प्रकार की उपेक्षा की संभावना नहीं है। श्लोक संख्या 13। किंग में भगवन कामो न संपत्ति तमानसः जस्या भगवन प्रजाध्यक्ष में धर्मान प्रभासते। हे स्वामी, जब आप प्रजापति हैं और धर्म के सिद्धांतों के पालन में साक्षात मेरे उपदेशक हैं, तो फिर मेरी इच्छाओं के पूरा न होने में क्या संभावना हो सकती है। इसके बाद ये श्लोक बताते हैं जिनमें ये बात कहते हैं कि हे मनीषी पुत्र, आप महापुरुष होने के कारण असुर तथा देवताओं के प्रति समभाव रखते हैं, क्योंकि आपके शरीर या मन से ये सारे प्रजा उत्पन्न हुए हैं, सभी सतो रजो तथा तमोगुण से दूषित हैं, लेकिन आप परम नियंता भगवान समस्त जीवों पर समदर्शी होते हुए भी भक्तों पर विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषस्तिनः प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चापियहम्। यद्यपि भगवान हरेक को प्रति समभाव रखने वाले हैं, किंतु वे अपनी भक्ति करने वालों के प्रति विशेष उन्मुख रहते हैं। भगवान कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। अन्यत्र भगवान कृष्ण कहते हैं, जे यथामां प्रपद्यन्ते स्तां तथैव भजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान को विभिन्न विधियों से प्रसन्न करना चाहता है, किंतु प्रसन्न करने की उनकी विधि के अनुसार ही भगवान उन्हें विभिन्न वर देते हैं। इस प्रकार अदिति ने अपने पति से विनय की कि चूंकि परम नियंता भी अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं और कश्यप का अपना ही भक्त पुत्र इंद्र संकट में है, अतएव उन्हें चाहिए कि वे इंद्र को अनुग्रह प्रदान करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोहस्तं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सकलजातं सुभगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखानितं श नमोऽं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज भी श्री श्री राधा राधिका रमण के भवन में उपस्थित इस प्रातकालीन भगवतीय सत्र में उपस्थित सभी भक्तवृंद मातृवृंद को मैं विशेष स्वागत करता हूँ। हरे कृष्ण। तो श्री भागवत महापुराण में ये जो प्रसंग आप जो क्रम अनुसार श्रवण करते हैं वो तो सुने हैं, जो नहीं कर पाए हैं आज आए हैं उनको थोड़ा पूर्व प्रसंग देना उचित है। कि प्रसंग इस प्रकार है कि बलि महाराज के द्वारा स्वर्ग जीता गया है। बलि महाराज ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करके देवताओं को परास्त करके उनको भगा दिए, निकाल दिए स्वर्ग से। इंद्र को अपने पोस्ट से, अपने घर से निकाल दिया। सब देवता अपने वेडिंग ना लेकर इसी भागे, टाइम नहीं मिला कुछ लेकर, भाग कर घर पर छोड़ दिया। और बलि महाराज इंद्र आसन पर बैठ गए, उनको निकाल कर बैठ गए, उनके घर जबर दखल कर लिए। अब बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, क्या करें, घर गया, मकान दुकान सब सामान पर सब लेकर कुछ नहीं। आ करके फिर आध हुए, छिप छिप करके आएंगे, क्योंकि वो दोनों पिता के घर एक ही था, माँ अलग अलग है, बाप तो एक ही थे कश्यप जी। तो इंद्र ने ओवर नाइट आया छिप करके, कई दिन भटकते भटकते लड़के मारे, आ करके माँ के पास पहुंच करके देखिए दुख पिता को बताने से वो शायद सुने ना सुने, माँ तो सुनेगी क्योंकि पिता समदर्शी होते हैं। उनके लिए तो क्योंकि उनके अनेक पत्नी थे, अनेक प्रकार पुत्र हैं, सबको तो देखना पड़ा पुत्र की तरह, लेकिन वो माँ जो है वो पार्शियलिटी करती है, मेरे पुत्र ये उनके पुत्र है, उनके अंदर स्वाभाविक होती है। तो इसलिए माँ के पास आकर के रात हुए इंद्रदेव ने, मतलब मैया देखिए हमारे घर द्वार से छीन गई, अब कुछ है नहीं। तो इस प्रकार के रोध हो करके कंप्लेन किए बताए, तो माता आदित्य ने बड़ी दुखी हो गई, खिन्न सा हो गई। उनको तो लगा कि देखो मेरे पुत्र को घर से निकाल दिए, बहुत अन्याय किए, बहुत दुखी हो गई, अब क्या कर सकती है। जब देवराज इंद्र को मार्केट में भगा दी, वो एक घबरा कर बढ़ा डाली, वो क्या कर सकती है बेचारी। लेकिन यही आशा लेकर के इंद्रदेव उनका पास आए थे कि पापा को बोलो वो कुछ करेंगे प्लीज, क्योंकि पापा से काम निकालने के लिए व्यवस्था तो ही होते हैं, है ना। तो माँ से काम कराना है, पिताजी से काम कराना है, तो माँ को पकड़ना है। तो जाकर इंद्र ने माता आदित्य के पास पहुंची और उनको रात में सब कंप्लेन करके आ गई। अब दूसरे दिन से माँ का आचरण व्यवहार से फर्क आ गया, वो बिल्कुल खिन्न सा हो गई। अब जो घर द्वार साफ सुथरा व्यवहार करने लगती थी, जो सब अपने पति के लिए सब सरंजाम पूजा सामग्री फूल अर्पित सब सजा कर रखती थी, जो करती तो है, लेकिन मन कहाँ है, दुखी हो गई, रोती रोती लड़ती से करती हूँ लटा करके, कभी कभी करती नहीं भूल जाती। अब ऐसे काम चलाई, क्योंकि पतिदेव तो अभी तपस्या बैठे थे, अब डिस्टर्ब करने के लिए सोचा डिस्टर्ब हो तो कुछ ना गड़बड़ कर दे, तो चांस लेना चाहिए, ये उपाय है। जब भागवत से सब प्रसंग इसलिए दिया गया है, भागवत में हरेक चीज अनेक प्रकार के अंग से शिक्षा में भरपूर है, कोई ऐसे नहीं कि भागवत केवल तो उन्हीं के लिए है, हम लोग नहीं, सभी के लिए, नहीं तो ये बात भागवत के लिए है। एक कश्यप ऋषि हैं, उनके कई पत्नियां हैं और अलग अलग पत्नी से अलग अलग इशू हैं, नाग के पिता भी वही है, चिड़िया के पिता भी यही है, पशु के, असुरों के, सुरों के, सब के फादर एक है, मदर अलग अलग। अब ये सब बात देकर के यहां पर ये प्रसंग विशेष करके सुखदेव गोस्वामी देते हैं कि वो भाई भाई में झगड़ा हुआ, एक भाई लोक ने दूसरे सपत्नी के पुत्र को संपत्ति को हड़प लिए, उनको निकाल दिए घर से, और फिर वो जाकर उनके माँ के पास कंप्लेन की वो कैसे काम निकालना होता है। तो माता आदित्य देवताओं की माँ है ना, तो देवताओं के मुख है, वो जानती थी कि सही से काम निकालना पड़ेगा, क्योंकि पिता तो सबके एक ही हैं, अगर कुछ ना बाप ना मानेंगे तो क्या कर सकती मैं। तो इसलिए वो सुजोग ढूंढ रही थी कि किस प्रकार से मैं इस प्रकार केस करूं ताकि केस में फैसला मेरे तरफ हो जाए। तो इसीलिए सुजोग देख करके अपने पतिदेव जब तपस्या में थे तो उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझी, बोला ना उनको तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको खुश करना है, पति से अगर काम निकालना है तो उनको क्या करना होगा, प्रसन्न करना होगा सभी से। अब किससे भी काम निकालना हो बहुत नाकि मालस करना पड़ेगा, नहीं तो है ना बेमतलब का उनको प्रशंसा करना पड़ेगा। अर्थात सनातन पाल, सनातन गोस्वामी पाल ने अगर जेल से निकालने का समय आया, एक जेलर जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ 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 करता था, आज जो जेल में थे वो जेलर आकर के सुप्रीम बैठता था, लेकिन उनको उन्होंने जिंदा पी ये नालायक था, लोभी था, वो जानता था उनको पैसा देकर फंसाएंगे भी, लेकिन बोलते तुम तो साक्षात जिंदा पीर हो, मैं तो मक्का मदीना जाना चाहता हूं, मुझे छोड़ देना चाहिए, इसे बात की तो फंस गया सरासर झूठ बोले तो ब्राइब भी देंगे उनको, आचार्य हैं, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी किया जा सकता, अगर लक्ष्य सही है तो कार्य तो कोई देखना नहीं, गुण अवगुण देखना नहीं जाता, सब सीधा हो जाएगा अगर उद्देश्य सही है, लेकिन उद्देश्य गड़बड़ है कितने अच्छा काम करो सारे गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने पति से फेवर लेना था तो इसलिए सुजोग ढूंढ रही थी किस प्रकार उनको कुछ प्रसन्न करके उनसे काम निकालना, तो ध्यान में बैठे और डिस्टर्ब ना करना चाहिए, लेकिन कैसे कहूं इसलिए सारे डिस्टर्बेंस हो रहा है घर के काम, घर के साफ सफाई जो सब बिल्डिंग्स में सब गड़बड़ कर रही है, दुखी तो है ये, खुद खाती पीती भी नहीं होगी। तो इसे कुछ दिन चला, अपने दुख में रही तो पति अपने तप से उठे, जो समाधि से उठकर जो घर पधारे, घर में आकर घर को देख करके देख ली ये क्या गड़बड़ है, क्योंकि उनके घर है आज तो सफाई नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, इधर सब सब गड़बड़ लग रहा है। तब आकर के सीधा और उनको देखे जो ये डिपार्टमेंट के चार्ज थी, जो सफाई जो टेबल कमांडर थी फास्ट पत्नी अदिति, तो उनको देखे उनको मुंह लटका कर बैठी थी दोती जैसे ही, तो उनको आकर बोले क्या है क्या समस्या है बताओ, वो पता तो नहीं था, तो उन्होंने कुछ अनुमान लगाया, बोले हो ना हो ये जो श्लोक में बताते हैं इतने सारे कारण श्लोक नंबर 12 में बताते हैं, आकर के सीधा उनको पूछे, पूछ करके कई बात पूछे थे उनको, क्या हो ना हो आप कोई गड़बड़ तो नहीं किया, सबसे गड़बड़ी में ऋषि कश्यप का मन में क्या आता है, घर के घर गृहस्थी में अगर कोई अनिति होता है कि उत्पटन कार्य दिखाई पड़ता है तो उसका कारण तत्काल उनको कारण दर्शन पड़ा कि आप लगता है कुछ अतिथि को व्यवहार सही नहीं किया, कैसे तो सबसे पहले कारण ढूंढे, मुझे लगता है कि अतिथि घर में आए हैं, अतिथि समझते ना, अतिथि किसे बोलते हैं आजकल दुनिया में, जितने गेस्ट हाउस है ना कोई अतिथि भवन नहीं, क्योंकि अतिथि का अर्थ होता है तिथि के बिना, कंफर्म किए बिना, पहले एडवांस बुकिंग के बिना जो आते हैं तिथि के बिना उनको अतिथि कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं बुकिंग क्या था नहीं, तो कैसे गेस्ट हाउस है, गेस्ट मतलब अतिथि, ये सब अभ्यागत भवन हो सकता है, अभ्यागत मतलब अभी तो आगत बारम्बार जो आते रहते तो फोन करके आते हैं पहले से बुकिंग करते, अभ्यागत है अतिथि नहीं, अतिथि मतलब बिना नोटिस में हटात आकर पहुंच गया तो उसको टेक किया ना, अतिथि को टेक किया, अतिथि देव भव देवताओं की तरह अतिथि को व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हम तो घर निकाल दे घट खोल नहीं क्या खबर नहीं ऐसे किसान ये है अतिथियों के सत्कार हमारा नाम देते गेस्ट हाउस अतिथि भवन क्या है अतिथि भवन जो अतिथि से नहीं आते बिल्कुल निकाल देते अतिथि वाले है सब निकाल दे तिथि वाले को रखते अतिथि तो सबसे पहले ये गड़बड़ होता है हमारा अगर अतिथियों को हमने सही प्रकार से सत्कार नहीं किए। ये सोचकर कि ऋषि कश्यप ने कहते हैं कि क्या आपने घर काम में इतने कभी व्यस्त हो गई थी, कोई अतिथि ऐसे आ गए थे जिनको आप सही से देखभाल नहीं कर पाए, देखभाल बाद में किए होंगे, उचित समय में उनको पानी आसन नहीं पूछे क्या, लेट हो गया क्या अतिथि सत्कार में, अतिथि वापस चले गए क्या कभी, यहां तक कहते हैं बोले अतिथि घर में आकर के अगर सही उपयुक्त ट्रीटमेंट ना पाकर वापस चले गए तो घर को किस तरह माना जाए मालूम है? सियार के घर को बताओ समझे। आजकल हमारे जो मॉडर्न फैमिली में अतिथि के सत्कार से गेट के बाहर से नेम प्लेट लगाकर करते हैं, क्या बोलते हैं हमारे अब्दाग कुत्ते के प्रति सावधान। हम जानते हैं कि घर के सामने जो नेम प्लेट लगता है किसका लगता है? घर के मालिक को लगता है। घर के सामने जो नेम प्लेट लगता है घर के जो मुरब्बी मालिक होते हैं उनका लगता है, वो कुत्ते का नाम रहता है। कुत्ते की घोषणा करते हैं वहां लगा तो अतिथि आने आ नहीं देखते, आ नहीं सकता। पहले जमाने तो स्वागत फड़क लटका रहते थे वेलकम, लेकिन अब वेलकम जमाना गया, अब सावधान स्वागत सावधान बन गया। अब बोलते हैं कि शायद आप ऐसा किया होगा तो हमारा बिल्कुल गड़बड़ हो गया होगा। अगर तो अगर अतिथि माता जी बोलते नहीं 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 मैं तो अतिथि को टेक कर, तो फिर कोई भिखारी आए होंगे उनको समुचित विज्ञान नहीं दिया क्या? क्या क्यों नौकर पाकर को सही ट्रीटमेंट नहीं किया क्या? अतिथि भृत्य भिक्षव ये इसे प्रकार देखते हैं कि गृहस्थी में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो यही कारण हो सकता है। आजकल तो कारण कोई सोचते भी नहीं, और सोचते तो उनको उनको सही दे दिया, उनको टाइम पर खाना दे दिया, जल अगर रोटी देना चाहिए था सौ रुपये दे हमने खाते वही दिया ना। ये क्या लेकिन कैसे बोलते हैं क्या उनको नौकर को भी भिक्षुक को भी अतिथियों को उचित सत्कार नहीं किया गया तो घर में इस प्रकार के असमंजस क्यों? कितने विपरीत वातावरण आ चुका है। तो ये पूछ करके क्यों ऐसा खिन्न मन है, घर में इस प्रकार असमंजस किस लिए है? जब पूछते हैं तो अदिति वाचक अदिति बोल रही है एक एक श्लोक में है प्रियपति मैं अग्नि अतिथि सेवक भिकारी ये सबका समुचित ध्यान रखती हूँ, सबको टेक केयर किया मैं। मैं जानती हूँ कि उनको अगर हम टेक केयर नहीं करो तो आप गुस्से हो जाएंगे, तो आपको प्रसन्न करने के लिए मैं उनका ठीक ठीक समुचित ख्याल किया क्योंकि मैं सदैव आपका चिंतन करती रही। ये सबकी अतिथि की भिक्षु की सेवक की क्यों ख्याल की? कि जानती हूं अगर उनमें गड़बड़ हो जाए तो आप बिगड़ जाएंगे, इसलिए आपका हमेशा चिंतन करती हूं, इसलिए उनको टेक केयर करती हूं। तो पति अगर आदर्श नहीं है तो ये आदर्श आएगा कैसे? आजकल इन लोगों के प्रति जिस दुर्व्यवहार होता है इसके कारण क्या है? पत्नी नहीं है कौन कहोगे घटी, आदर्श नहीं है गुण नहीं है बहुत अच्छा विद्या नहीं ना ठीक है मगा दिया खुश होंगे, लेकिन वो पति खुश नहीं होंगे। पति के बारे में चिंतन करती है कितने महान है। अगर अतिथि भिक्षुक सेवक आदि को अग्नि ब्राह्मण को उनके ठीक से समुचित व्यवहार नहीं किया जाए तो पति रुष्ट हो जाएंगे, इसीलिए उनको चिंतन करके समुचित रूप से उनको व्यवहार की थी क्योंकि मैं सदैव आपके चिंतन करती रही। अतः धर्म में किसी प्रकार की उपेक्षा की संभावना नहीं है, धर्मचरण तो बिल्कुल ठीक की। फिर क्यों? क्योंकि आपने घर साफ सुथ नहीं की ये सब नहीं की लेकिन बाकी सब पब्लिक डीलिंग सब ठीक है। को नु में भगवान कामो न संपद्यते मानसः। हे स्वामी जब आप प्रजापति हैं धर्म के सिद्धांत के पालन करने में साक्षात उपदेशक है मेरे उपदेशक आप जैसे मेरे उपदेशक है इंस्ट्रक्टर है मेरा तो फिर आपके इंस्ट्रक्शन में कैसे भूल जाना? आप जैसे मुझे कड़ाक उपदेश दिए इस सब के साथ इसी प्रकार व्यवहार होना चाहिए बिल्कुल उचित व्यवहार मैंने किया धर्म को उपेक्षा नहीं की तो फिर मेरी इच्छाओं को पूरा होने में क्या संभावना, पूरा ना होने में क्या संभावना? तो ये बात को इधर जोड़ी बोले मैं सब आपको ख्याल करके सबको ठीक ठीक ट्रीटमेंट किया हूं, आपको प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार के प्रयास किया हूं, किस लिए किया हूं? क्योंकि मैं जानती हूं मेरे इच्छा निश्चित रूप से पूरा करेंगे, मेरे डिमांड तो पूरा करेंगे ही। अब डिमांड बताया नहीं पहले से क्या बोल दिया आप तो पूरा करेंगे, बताया नहीं क्या पूरा करें, पहले आप तो करेंगे निश्चित। ये है टेक्निक। अगर पत्नियों को अपने पतियों से काम निकालना है, आजकल तो सब गड़बड़ करते हैं, लेकिन विधि यही। देव माता अदिति वो अपने आचरण से सिखाती कि इतने बड़ी विपद आ चुका है, अपने परिवार अपने पुत्रों को बेघर कर दिया गया, कैसे पति से उनको फेवर लेना है। इसलिए इस प्रकार होता है तो आप तो जरूर मेरा काम करेंगे ही, क्योंकि मैं आपको ख्याल रखकर के सारे काम ठीक ही हूं, इसलिए मैं आपके इस सब धर्मों को पालन करूंगा, निश्चित रूप से आप मेरा इच्छा पूरा कैसे ना करेंगे। इसी बोला कि जैसे बोले करना ही पड़ेगा, करें क्या, करना ही पड़ेगा। अब क्या इच्छा बता रही, अब बोलते कि मेरी इच्छा कैसे पूरा नहीं करेंगे। अब ये तेरह श्लोक भी बता करके आप मेरी इच्छा कैसे ना पूरा करेंगे कह करके फिर इस पर चौदहवां श्लोक बोलते हे मरीचि पुत्र। अभी दो श्लोक तो पति स्वामी कह रही थी, आओ सीधा पति के नाम न लेकर पति के बाप के नाम। पति खुश होते ना, देखो उनके पिताजी के नाम नहीं मेरे पिताजी के नाम, लेकिन पत्नी सब अपने घर के बाद सोचते हैं माँ के बाद, लेकिन सीधा माँ दी चह मतलब उनके घर को तो भूल ही केवल मोरा पर निर्भर है। पति अगर सोचेंगे तो इसलिए पत्नी के प्रति आसक्त हो जाते हैं पतिगण, क्योंकि वो आकर बोलते हैं रुचिरान से मंत्रान आकर चुप चुप बोलते हैं, देखो शादी होने के बाद घर में एकांत बोलते देखो मैं आपने नाम भी बदल डाली, गोत्र बदल डाल, परिवार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, भाई बंधु कुटुंब संपत्ति सब त्याग दिया, किस लिए केवल आपके शरण में आई हूं, आपके दासी बनकर आपके सेविका बनकर आई हूं, सब त्याग करके आप कैसे मुझे छोड़ सकते। सब छोड़ कर मेरे शरण सर्वधर्मान परित्यज्य, बोले हमारे भगवान भी कहते हैं हम सर्व पाप है मोक्ष इच्छामि, मां सोचो डरो मत, सारे पाप से सर्वभ्य पापभ्य अहम मोक्ष इच्छामि। जब भगवान कहते हैं आप भगवान के भक्त हो तो आप ही गारंटी दो, मैं सर्वधर्मान परित्याग करके आपके शरण में आई हूं, आपके शरीर का मंत्र आप कैसे मिस्ट्रीट करेंगे। लेकिन आजकल पत्नियां ऐसे ट्रीटमेंट नहीं करती ना, उनको घर में ऐसी शिक्षा भी नहीं मिलती। घर से जब शादी कराने समय पहले जमाने में ऐसी शिक्षा होता था, आपने लड़की आपने तरह से अपने पति नहीं ढूंढते थे, उनका अभिभावक उनके पिता उनके चाचा जाऊ जो उनके हितैषी हैं जो उनके हित चिंतन करने वाले, उन लोग ने उनके नेचर को उनके स्वभाव को उनके व्यवहार को जानते हैं, अपने बेटी के नेचर स्वभाव जान करके इसी के हिसाब से कैसे खुश होगी इसी प्रकार से उचित पात्र ढूंढ करके लाते हैं। अनेक प्रकार से देखते थे गुण चरित्र धन योग्यता और सब प्रकार से स्वभाव सब देख करके ढूंढ करके ऐसे करते थे। लेकिन आजकल तो जमाना गया सब अपने आप सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में पिताजी की इंटीमेशन करते देखो भाई ये सब दिस इज माई डिमांड, ये मेरा डिसीजन है आप मानो तो ना मानो, पिताजी बेचारे क्या करें मानना सरेंडर करना। तो करते फिर कभी कभी जब आता हूँ सपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, हम भी इसी कहते हैं तो ये क्या क्या करते तो करते फिर विदाई के समय में आजकल जो हस्बैंड होते हैं वो भी ऐसे रहते हैं, वो भी अपना डिमांड लिखाते हैं दारू के हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो सबको पूरा लोन फोन करके पूरा दे करके विदाई के समय में ये विदाई उत्सव के जो मंत्र देते हैं वो बोलते हैं कि बेटी देखो जो जो मुंह मांगा सब दिया, कोई कसर नहीं छोड़ा, लोन करके दिया, ये नंबर तो तेरा पास है ही है, एक्स्ट्रा एक प्राइवेट नंबर रख लो, कोई गड़बड़े सीधा फोन कर लो खींच लूंगा कोर्ट में केस। ये ट्रेनिंग विदाई के समय में देते हैं, तो कैसे पति की सेवा करेगा। और तो बार बार धमकी देगा आप हमको खड़ा है वो कैसे झुटमुट कैसे लगा दे तो खींच जाए डर के मारे हुए वो क्या दासी बनेंगे हम दास हम क्या करेंगे ये देव माता अदिति का शिक्षा अब तो दानवी शिक्षा है ना लेकिन माता अदिति ने देव माता होने के नाते ये जो शिक्षा देती है कि उनके पुत्रों को भला करने के लिए अपने पति से फेवर लेने के लिए किस प्रकार बात करना है किस प्रकार व्यवहार करना है सीधा उनके पिता के नाम लिया सबसे पहले श्लोक में हे मारीच कश्यप ऋषि के पिताजी का नाम मारीच सीधा मारीच मेरे पिताजी है ना ससुर के नाम पर हे मारीच आप महापुरुष होने के कारण सिद्धा पिताजी फिर आप महापुरुष साधारण पुरुष थोड़ी महान पुरुष आप महापुरुष होने के कारण असुर और देवता सबसे पहले असुर नाम देवता जिनको विरोध करने वाली है उनको पहले नाम लेती है आप महापुरुष है लेकिन सबसे पहले आपके जो दूसरी पत्नी के बेटे हैं असुर उनके प्रति आप है उनके फेवर में तो है मेरे बेटे के फेवर में है असुर और देवताओं के प्रति तो संभाव रखते हैं क्योंकि ये तो आपके शरीर से मन से उत्पन्न तो सारे आपसे ही उत्पन्न है आपके पत्नी तो अलग है सारे प्रजा तो आपके हैं भले उनके गुण अलग अलग है मेरे बेटे सतगुणी है वो तमगुणी रजगुणी है लेकिन है तो सारे आपकी प्रजा किसी ने गुण से युक्त है लेकिन परम निरंतर भगवान जैसे सब जीव के प्रति समान होते हुए भी भगवान भगवान तो सबके है सभी के प्रति समान होते हुए भी भगवान खुल कर बोलते मैं तो मैते ते सुचापि हम मैं तो मेरे भक्त का मेरे हूं मैं उनके हूं इसी को प्रभुपाद जी ने शुरुआत में बोलते हैं भगवान गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष न प्रिय पूरे संसार में सभी प्रति मैं समान हूं वाइट इंपार्शियल मेरा कोई शत्रु कोई मित्र नहीं न द्वेष न प्रिय ये कह दिए बोलते इसी जनरल रूल है सर्वसाधारण नियम है लेकिन मेरे प्राइवेट घर के अंदर ये नियम नहीं चलेगा भाई सड़क में किप लेफ्ट बाएं चल घर के अंदर हमसे बाएं चल खट में बाएं रहूं खाने में बाएं बैठूं ऐसे थोड़ी चलेगा यहां पर जैसे सुविधा मेरे घर के अंदर मेरा यहां ये रूल नहीं चलेगा इधर स्ट्रेट रूल है ना तो इसलिए भगवान कहते हैं ये तो सर्वसाधारण रूल है मैं बनाया कि समो हम सर्व होते सुना में दूसरा ना प्रिय लेकिन मैं जब घर में आ जाता हूं मेरे भक्तों के साथ रहता हूं ये भजन के दिमाग भक्तिया जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं मैं तो उनका हूं मेरे यहां तो प्राइवेट रूल है ये पब्लिक रूल यहां नहीं यहां भगवान अपने भक्तों के साथ अपने प्राइवेट रूल डीलिंग करते हैं ये रूल यहां नहीं ठीक इसी बात को यहां ध्यान देती है माता आदित्य ने कश्यप जी बताते देखिए भगवान भी जैसे सबके प्रति समान होते हुए आपने भजने वाले भक्तों के प्रति पक्षपात तो करते ही है ना उनके फेवर करते हैं ना तो आपके भक्त आपके बेटा इंद्र सतगुणी है हमेशा अच्छा काम करता है और आपको हमेशा पूछता है आपको सम्मान करता है आपको करना चाहिए ये बात कहेगी आगे पहले अभी प्लेटफॉर्म बना रही है तो बोलते हैं कि इसलिए जब भगवान भी अपने भक्तों के हमेशा अनुकूल रहते हैं तो आपको भी अनुकूल होना चाहिए और क्या अनुकूल है अभी आगे बताइए मतलब इससे एक दो तीन श्लोक से अदिति भी बात जो श्लोक पहले कही अभी क्या कहना चाहिए पूछ रहे हैं पतिदेव बोलो किस लिए गड़बड़ी है लेकिन ये सीधा से नहीं सीधा बताने का नीति नहीं इसलिए भगवान कोई प्रार्थना शब्द के परोक्षवाद वेद परोक्षवाद वेद में कई बात सीधा नहीं बताया इसीलिए तो जो ज्ञानी है उसे फंसे हुए जितने वेद पाठ ये वेदांती है दांत निकल गया लेकिन समझ नहीं पाते क्यों क्योंकि वेद परोक्षवादी न सीधा प्रत्यक्ष व्यवहार वेद में नहीं लिखा गया भगवान कृष्ण है वेद में नहीं लिखा गया ना घुमा फिरा करके इधर उधर अस्मावीरम आयम अनंतम अरे कौन है वो प्रत्यक्षवादी नहीं हमेशा परोक्षवाद परम अनियंता, परम रक्षक, यही से है, सबसे परे हैं, उनके अंदर बाहर कुछ नहीं है, यही से है, हाथ पर है नहीं की है, वेद का पढ़ते चल नहीं सकते, भागते सब इसी से बात करते हैं, विचार वेद घूम हो पड़े, बोलते हैं कोई नाम वाम है नहीं, एड्रेस नहीं, ये कहां से लाए राम कृष्ण सब, अरे नाम वाम है नहीं, उनका हाथ पर है, रूप है नहीं भी, वो है किसका तो होगा, वो विचार नहीं नाम आता नहीं, प्रत्यक्षवादी नहीं है, सब परोक्षवादी, इसीलिए सब वेदांति जितने हैं जिनका दांत निकल गया वो बेचारे कहां समझेंगे, तो ही बात है, तो डायरेक्ट नहीं कहते हैं, जो वेद भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए डायरेक्ट बात करते हैं, तो यहां भी भगवान को भक्तों प्रसन्न के लिए इनडायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्ट नहीं कहते कि भाई मेरे लड़कियों को निकाल के मारपीट करेगा आप उसकी जी ना, सीधा नहीं करते, सीधा करने से बोले ये भी मेरा बेटा है मारते क्या होंगे, वो कुछ किया भाई से बोल सकते हैं तो क्या होगा, ये तो बेटा है आपस में कुछ किए होंगे, ये क्या काम थोड़ी है, तो ये बेटा होगा बेटा लड़ाई क्यों होंगे, तो मैं क्या कर सकता, तो ये आंसर तो नहीं चाहती थी किसी भी कीमत से, ये सिचुएशन ना आए बिल्कुल मेरे बेटे के भगवान में काम हो, ये बस नहीं आया, इसीलिए इतने सारे प्लेटफॉर्म बना रही है, इतने पापड़ बेलने का ये कारण है कि ऐसे बनाते हैं कि ये सीक्वेंस क्रिएट करते हैं कि इनडायरेक्टली परोक्ष भाव से उनको बिल्कुल कंफर्म राजी करा करके आप तो केवल मेरा फेवर करेंगे ही, जब मुझे प्रमिस ले लेगी तब बताएंगे, देवताओं को तुम ही देवताओं के भाई होकर के भगवान को निकले, एक बार देवपुत्र बामन होकर उपेंद्र इंद्र के छोटे भाई बनकर गए, ठीक इसी प्रकार काम उन्होंने, दिव्य मनुष्य वही है, जा करके बोले बलि महाराज के वहां, बलि महाराज बोला आपको मांगने के लिए आए, मैंने हाँ मांगने के लिए आया, देख लिया मांगने की इच्छा से आया, आप बहुत दाम रखना करने सुना इसलिए तो मांगने आया, मुझे चाहिए ना, बोलो क्या चाहिए, नहीं बोलो क्या चाहिए, नहीं बोला अगर क्या चाहिए बोल दो ना, अब इतने घुमा फिरा करके दो अध्याय लगाए इसको क्या चाहिए बोलने के लिए, तो सब बोर होते हैं, बताते क्यों नहीं क्या चाहिए, वो नहीं बताते हैं, हम तो संतुष्टि होते हैं, हमको केवल थोड़ा सा संतुष्ट मिल जाता है, हमको ज्यादा चाहिए नहीं, क्या चाहिए तो बताओ, नहीं बता बोलिए अपना तरफ से बोला ये चाहिए वो चाहिए, ये दे दूं वो दे दूं, नहीं 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 इधर क्या चाहिए तो बोलो, दो अध्याय पाठ पढ़ाकर अंत में बोलते हैं थोड़ा जमीन चाहिए, जमीन में तो कितनी बार जमीन राज्य दे दूंगा, वो राज्य लेकर क्या करूं, छोटा सा जमीन चाहिए मुझे, अब लास्ट में बोलते मुझे तीन पग भूमि चाहिए, अरे बताओ तीन पग भूमि, ये पंजाब बाग में दे दूं ना, ईश्वर क्लास में दे दूं, पूरा दिल्ली देना चाहता था, यहीं पर ले लो इस रूम में ले लो, तीन पग तो है इस रूम में खड़े हुए ना, बोले नहीं अब मांग लो, नहीं ऐसे मांग लो नहीं, आप आगमन चाहिए तीन पग घूम के आगमन चाहिए, आगमन चाहिए, अभी तक बलि महाराज ने पूरे संसार में कोई आकर के हाथ पताया और खाली हाथ नहीं गया, कोई आगमन चाहिए कराया किसी को नहीं कराया, सब आए मुंह मांगा सबको दिए थे, सब तृप्ति होकर गए थे, पहले एक भिख मंगा का नाम आप बोलता है कि बिना अग्रीमेंट में नहीं मांगूंगा, मांगूंगा नहीं मैं, अरे तो कैसे मैं तो बोलता हूं दूंगा नहीं, मैं दूंगा करके फिर मुकर जाए, अरे ऐसे हिस्ट्री में हुआ नहीं मेरे रिकॉर्ड में, कोई प्रमिस करता ना प्रमिस लिखा पड़ी हो जाए, बिना लिखा पड़ी नहीं मांगू, तो भगवान को नहीं करना सीधा सीधा नहीं होता है, बहुत टेढ़ी की भगवान के स्वरूप भी टेढ़ी है, त्रिभंग ठाने वो सीधा नहीं खड़े होते, सीधा से काम नहीं होता, हमेशा टेढ़े रहते हैं, और उनके नियम भी टेढ़े, उनके भक्त भी टेढ़े, सब टेढ़े में सीधा से काम नहीं होता, एक भगत बोलते भगवान टेढ़े क्यों होते हैं, सीधा सीधा होते क्यों नहीं, साफ सीधा सीधा होते हैं, बोलते टेढ़े इसलिए नहीं होते होते हैं, सीधा नहीं होते, क्योंकि भगवान का प्रोजेक्ट है हम जैसे पतितों को उद्धार करने के, जो गिरे हुए हैं सड़ रहे हैं मर रहे हैं दुखी हैं उनको मदद करें, उनको उठाएं, उनको उद्धार करें, ऊपर उठाएं, तो हमने बोले महात्मा जी, बोले आप कुएं से कोई पानी उठाएंगे, नीचे से कुछ चीज उठाएंगे, सीधा सीधा खड़ा होकर उठा सकते हैं? सीधा हाथ सीधे हाथ खड़ा होकर उठा सकते हैं? 10 ग्राम चीज उठा सकते हैं? आपको झुकना पड़ेगा, हाथ भी मेहनत करना पड़ेगा, बिना टेढ़े मेढ़े हुए किसी को उठा नहीं सकते। ऊपर से ले सकते हैं भले से, ऊपर से उठाने के लिए बैंड होना पड़ेगा, बिना बैंड के उठा नहीं सकते। तो भगवान इसलिए हमेशा बैंड है कि हमेशा उठाना चाहिए, परम कृपा, बाकी कोई इसी भी कतरा नहीं, हमेशा त्रिभंग उठाने उठाना चाहिए, हम लोग को मदद करना चाहिए, उठाना चाहिए, इसीलिए बैंड होकर खड़े कमर कस करके उठाते। तो इसलिए उनका भाव है कि उनके भक्त भी इस तरह। और अगर सीधे होते, और दूसरा कारण है, अगर आप भगवान को अंदर में ले लिए सीधा सीधा, फिर सीधा आपके निकल जाए, जैसे सीधा गए ऐसे सीधा निकल भी जाए, लेकिन टेढ़े है, एक बार गया फिर निकल नहीं सकते। तो भगवान को बोलते मेरे स्वभाव ऐसा है, मुझे एक बार कहीं गया सो गया, वन वे टिकट रिटर्न नहीं होता, मेरे पास जो आए वो भी यही है, मैं जिसके पास गया वो भी यही, रिटर्न यहां नहीं भी जो आया फंसा वो जिनके पास गया वही फंसा। तो इसलिए माता आदिति ने आप कश्यप जी को जिस प्रकार प्रार्थना करना शुरू किए, उनमें पूछे कि क्यों ऐसा ऐसा हुआ है, सब सब बताना चाहिए था मेरे बेटे, लेकिन ये ना बता करके इतने प्रसन्न करने का प्रयास की और पति को प्रसन्न कर ही ली केवल बातों में। यद्यपि व्यवहार में सब घर में साफ सुथरा नहीं थी, ये सब बिल्कुल कश्यप जी को दिखाई पड़ रही सब गड़बड़ है, लेकिन बातों ऐसे की, बातों बातों में बिल्कुल पति सुप्रसन्न हो गए। आप जो बात कही बाद में, तब बोल दे ठीक है, फिर आप ये काम करो, आगे बता बताएंगे, इतने बढ़िया सा सरल उपाय बताए, पयव्रत विधि बता। पयव्रत देखिए, दो पत्नी थे, एक दीति और अदिति, एक देवताओं की माता एक असुरों की माता, दीति है दैत्यों की माता और देवताओं की माता है अदिति, आदित्यों की माता। उनको जब परेशानी हुआ उनके पुत्रों के लिए जाकर के प्रार्थना की, तो उनको व्रत बताए केवल 12 डेज, केवल 12 दिन में फिर फास्टिंग नहीं करना, केवल दूध पी के रहना, दूध धारी, दूध पी करके 12 दिन के व्रत करना है, भगवान पुत्र रूप में आ जाएंगे, ये उपाय बता दिया अदिति। अब उनके दीति भी जाकर उनका भी ध्यान हुआ, जब मार्केट के भगा ले गए तो वो भी जाकर प्रार्थना की, लेकिन उनके और उनके देखिए कितना अंतर है, असुरों ने असुरों में, देवताओं के माता जाकर के पति प्रसन्न करके उनको डिस्टर्ब नहीं किया, किस प्रकार बोली तो उनको बताने बोला 12 दिन में भगवान पुत्र आए, और दीति खींच रहे उनको, क्या संध्या कर रहे गायत्री कर, संध्या के समय उधर गायत्री करने नहीं दिया, खींच कर उठा दिया डिस्टर्ब, चलो अरे शाम के समय है नहीं, अब ऐसा प्रेसिंग सिचुएशन किया बेचारे पति और सामने जान बूझ करके फंस गए आप, जिसके कारण से महा असुर हिरणा के हिरण से बोली दी, बोले तुम ऐसा सके तो ऐसी हो, और उनको ऐसा नियम से किया तो पुत्र भगवान, आज भी इस सबसे शिक्षा ले सकते हैं, ये गृहस्थों के लिए पति पत्नियों के लिए, दोनों ही पुत्र कामी थे, दोनों माता पुत्र कामी थे, लेकिन पुत्र कामना का जो विधि है ये अदिति के विधि, इस विधि से 12 दिन के व्रत में भगवान पैदा हुए, और वो तो कितने महीने तक ही, कितने महीने तक करने के बाद में कौन पैदा हुए, महाअसुर मान का पूरा धरती का अपमान कर डाले, इतने तकलीफ के जन्म होने से पहले से ही अपना सिम्टम्स दिखाई पड़ा है ना, इसे बोलते खतरनाक। तो ये समय और उपाय और आपके जो जिस प्रकार से आपका भाव है इसके अनुसार पुत्र होते हैं, इसलिए माताओं जो इस भाव के इस प्रकार के उपाय करें तो देवता जैसे पुत्र होंगे। देवता और असुर काल मैंने किसी को बता रहा था, किसी ने मुझे बता रहे थे, बोले क्या करूं हम तो ये सब इतने सेवा कर रहे हैं, इतने सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शत्रु हमारे पीछे पड़े हैं, पसंद नहीं करें, लोग तो पीछे पड़े हैं, कितने भलाई करो उनके लिए नुक्स देखते हैं, हमारे पीछे पड़ गए, कंप्लेन करते रहते हैं। मैं बोला प्रभु जी आज की बात नहीं है, भगवान जब से दुनिया बनाए, दुनिया बनाने से उसी समय में कोई अतर्पण नहीं, उसी समय में दो बनाए थे, देवता और असुर एक साथ, दोनों बिल्कुल डिफरेंट एटीट्यूड थे, दोनों जन्म तक अभी से भारत जन्म से दोनों दोनों के शत्रु है, फ्रेंडशिप तो शुरू से नहीं किए थे, अपोजिशन पार्टी फ्रॉम द बिगिनिंग। बोले भगवान ऐसे बोले हाँ, बोले क्यों अपोजिशन पार्टी रखे, बहुत बड़े आवश्यकता है अपोजिशन पार्टी का, अगर विरोधी दल ना होते तो हम सुधर नहीं सकते, सुधरने का चांस ही नहीं मिलता, क्योंकि हम हमारा अपना आदमी हमारा दोस्त को भी देखेंगे, हम कुछ भी करें ढाकेंगे, चलिए ठीक है अपना, तो हमको सुधारने के लिए हमारा दोस्त को दिखाने के लिए विरोधी होना चाहिए, आंटी पट होना चाहिए। तो भगवान ने सृष्टि में शुरुआत से ही सुर और असुर रखे, अपोजिशन रखे, ताकि वो भी ठीक हो, वो भी ठीक हो, तो होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कभी देवता कभी असुर, पिता एक है, दोनों तरफ से अलग अलग करते हैं, लेकिन अंतर क्या है, दोनों तो बेटे हैं भगवान के, अंतर है जो देवता है भगवान को मानते हैं और ये भगवान को नहीं मानते अपने बल बुते पर, उनके बल भगवान है और उनके बल अपने, इतने फर्क है, और नियम को धर्म को मानेंगे और विपरीत है, उसका विपरीत है कभी ना इतने जन्म से उनको अलग, शास्त्र के विधि को जो मानते हैं वो कहलाएंगे देवता, जो शास्त्र को नहीं मानेंगे वो कहलाएंगे असुर। अब हम सब, मैं किसी को बोलना नहीं चाहता हूं, पर्सनली अपने आप पूछो, हम शास्त्र को कितने मानते हैं और कितने नहीं मानते, तो इससे पता चल जाएगा हम किसी खाते में हैं, असुर में कितने हैं, सुर में कितने हैं, शास्त्र में क्या क्या नियम बता गया ये तो मुझे पता ही नहीं, पता करने की जरूरत नहीं पड़े, पता नहीं करे पता करे तो पालन करना पड़ेगा, लेकिन भगवान कहते हैं जब शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम, इसी जीवन में तो सुख नहीं सफलता नहीं, अगले जन्म में भी कंट्रैक्ट लिया हो ही नहीं सकता, लेकिन हम इसको जाने तभी ना, तो इसलिए देवताओं की तरह बनने के लिए इस प्रकार से करना, उनका व्यवहार उनके भाव उनकी नम्रता सहनशीलता एवं ये सब आभी जात से जन्म से उनके साथ आता है, और असुरों के साथ दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च, ये सब आहु जाते वो भी उनके जन्म से आता है, बिल्कुल उत्पटांग नहीं मानेंगे, जरूर करेगा हमेशा उसके विरोध करेंगे, विरोध ही करना आता है, भगवान ने उनके स्वभाव दिए हैं विरोध करते रहे, क्योंकि जो सपोर्ट करने वाले वो भी सुधरेंगे, विरोध कोई होने होगा, इसलिए भगवत व्यवस्था है वो होते ही रहेगा। ये दीदि और अदिति एक पति के पत्नी है और उनके अंदर झगड़ा एक बार नहीं चलता ही रहता है, कभी यो कभी दाव पंच में रहते हैं, और यही है संसार, इसी के साथ हम रहना, तो कभी अभी असुर शक्ति बड़े होकर हम दबा देते हैं, ये है सीजन आ गया ठंडी के सीजन आया स्वेटर पहन लो ठंडी हो, तो इसे समय के अनुसार होता है कि असुर कभी सुर। तो अभी बारी आया है देवताओं के, देवताओं ने आकर के माता आदित्य प्रार्थना की, माता आदित्य ने कश्यप ऋषि के परामर्श से उनके प्रभाव से उनके वरदान से भगवत ऋषि पुत्र प्राप्त करेंगे, ये पवित्रत की विधि के वर्णन इस अध्याय में वर्णन किया गया। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसका? हरे कृष्ण।